नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। भारत और फिनलैंड के बीच आज नई दिल्ली में पर्यावरण, सहयोग, प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी तथा सांख्यिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय मंचों में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। अपने संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया तक दुनिया के कई क्षेत्रों में लगातार संघर्ष जारी है। श्री मोदी ने कहा है कि ऐसे वैश्विक माहौल में भारत और यूरोप दो प्रमुख राजनयिक शक्तियां अपने संबंधों के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रही है। कई देशों के शामिल होने के साथ ही पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष तेजी से बढ़ गया है। अमेरिका और इसराइल ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं और तेहरान मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई कर रही है। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्ला भी ईरान के साथ हमलों में शामिल हो गया है। क्षेत्र स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के इसे खतरा बताते हुए कई देश चिंता व्यक्त करने के साथ ही स्थिति को शांत करने का आह्वान कर रहे हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान ने आज ईरान पर अपने नखचिवान क्षेत्र में ड्रोन हमले का आरोप लगाया है। आज सुबह ईरान के इसराइली और अमेरिकी ठिकानों पर नए हमले किए गए। ईरान ने कहा है कि हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को नष्ट करने पर अमेरिका को पछतावा होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में 4 डिजिटल उपकरणों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2027 की जनगणना के लिए महिलाओं और पुरुषों के प्रतीक शुभंकर प्रगति और विकास का औपचारिक अनावरण किया। इस उपकरणों में हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, क्रिएटिव वेब एप्लीकेशन, HLO मोबाइल एप्लीकेशन, स्वगणना पोर्टल और जनगणना प्रबंधन तथा निगरानी प्रणाली पोर्टल शामिल है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र ने देश भर में गणना कार्यों को सुगम बनाने के लिए ये उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होकर आगामी 12 मार्च तक जारी रहेगा, जिसके तहत 5 बैठकें आयोजित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, जिनके पास फाइनेंस पोर्टफोलियो भी है, आगामी 10 मार्च को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान पेश करेंगे। बजट पर चर्चा एवं पारित होने हेतु 11 मार्च को पेश किया जाएगा। बजट के पहले दिन कल 7 सरकारी बिल पेश किए जाएंगे, जिनमें अरुणाचल प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण दल बदल निषेध संशोधन विधेयक 2026, अरुणाचल प्रदेश शिक्षकों का स्थानांतरण और पोस्टिंग विनियमन और प्रबंधन विधेयक 2026 और अरुणाचल प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 शामिल है। इस बीच विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव के लिए एक संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। स्पेयर कोर के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में एक एकीकृत लाइव फायरिंग अभ्यास का आयोजन कर सुरक्षा बलों के बीच परिचालन समन्वय का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP और असम राइफल्स के जवानों ने इस ड्रिल में हिस्सा लिया, जिसमें सटीकता, तेजी से टारगेट पर निशाना और कई एजेंसियों के बीच बिना रुकावट युद्ध के दौरान आपसी तालमेल को दर्शाया गया है। NHPC लिमिटेड द्वारा 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहली मार्च को यूनिट 5 के जनरेटर रोटर को जनरेटर पिट में सफलतापूर्वक उतारा गया है। 673 मीट्रिक टन वजन वाला यह रोटर भारत के किसी जल विद्युत संयंत्रों में अब तक इस्तेमाल किया गया सबसे भारी उपकरण है। तवांग पुलिस ने बुधवार को वेस्ट बंगाल के एक पर्यटक को बुद्धा पार्क से चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनपुट्स पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी का तुरंत पता लगाकर चोरी का सामान बरामद किया, जिसमें एक मध्यम आकार की बुद्ध की मूर्ति, 2 तिंगशा झांझ और 2 धातु के लैंप शामिल है। हालांकि पार्क की देखभाल करने वाले बौद्ध भिक्षु ने आरोपी को क्षमा करते हुए उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करने का फैसला किया है। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक भारतीय टीम बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 126 रन बना चुकी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।